संख्या 121। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, एक भाषा एक राष्ट्र ही सामाजिक अंतर विरोधों का एकमात्र निदान है। तमिल भाषी आंध्र से, हैदराबादी तेलुगु से, मराठी गुजराती से और गुजराती मराठी से घृणा क्यों करते हैं? उन्हें एक सामूहिक सर्किल में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब तक सरकारी दबाव में सामूहिक रिहायश की मजबूरी रहेगी, इन परस्पर विरोधी तत्वों में कभी समरसता नहीं आएगी। उनके अनुसार, जो लोग भी कनाडा, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका का उदाहरण देते हैं कि वहाँ बहुभाषी राज्य जिंदा है, उन्हें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि अभी यह राज्य पुराने नहीं हैं। कुवैत का कनाडा से अलग होने का विवाद अभी जिंदा है। ब्रैकेट में, जिन लोगों को पता होगा वे जानते हैं कि कुवैत ने कनाडा से अलग होने के लिए वर्ष 1995 में जनमत संग्रह कराया। इसमें 49% लोगों ने अलग होने के पक्ष में वोट दिया। उनका कहना है कि कनाडा की फेडरल सरकार उनकी भाषा फ्रेंच के साथ पक्षपात करती है। पाकिस्तान के बंटवारा के पीछे भी भाषा मुख्य प्रश्न था। अंबेडकर ने इस बात की चुटकी ली कि पूरे देश को कांग्रेस ने एकता के सूत्र में बांध रखा है। तो उनके शब्दों में, कांग्रेस का अर्थ जवाहरलाल नेहरू और नेहरू का अर्थ कांग्रेस था। तो क्या नेहरू अमर है? अंबेडकर ने भविष्यवाणी की कि यह झगड़े अगले चुनाव अर्थात 1957 के चुनाव से पहले ही खड़े होंगे। और बॉम्बे जैसे राज्य में तो गृह युद्ध होगा, इसीलिए मेरी राय है कि राज्यों का भाषाई आधार पर शीघ्र बंटवारा कर दें, तभी लोकतंत्र और सामाजिक सांस्कृतिक एकता कायम की जा सकती है। कोई भी राज्य अपनी स्वयं की राष्ट्रीयता के साथ एक भाषा के ही आधार पर, जो वहाँ की क्षेत्रीय और राजकीय भाषा भी हो, आसानी से तरक्की कर सकता है। किसी भी राज्य की अस्मिता और स्वतंत्र अस्मिता की राह में बहुत बारीक अंतर है। इस दीवार को पाटा नहीं गया तो भारत आधुनिक देश बनने से वंचित हो जाएगा। हम लोग मध्यकालीन भारत के युग में प्रवेश कर जाएंगे, जैसे उस युग के राज्य परस्पर प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष में उलझे रहते थे। भाषावार राज्यों की भी अपनी स्वाभाविक कठिनाइयां हैं और भाषाई राज्यों को न रखना भी खतरनाक है, किंतु दूसरे में खतरे की संभावनाएं ज्यादा हैं और उनके ऊपर काबू पाना एक असंभव काम है। इस खतरे से बचने का एक ही उपाय है कि राज्यों के भीतर राजकाज की भाषा क्षेत्रीय भाषा न हो, वहाँ भी हिंदी ही राजकाज की भाषा हो। जब तक हिंदी को वहाँ कामकाज के लिए बना पाना कठिन हो, तो अंतरिम काल के लिए अंग्रेजी को राजकाल की भाषा बनाया जाए। वे प्रश्न करते हैं कि क्या भारतीय उनके इस फॉर्मूले को स्वीकार कर लेंगे? ऐसा न करने पर भाषावार राज्यों का बंटवारा भविष्य के लिए कठिनाइयां पैदा करेगा। लोगों की एकता के लिए एक भाषा का होना जरूरी है। दो भाषाएं आपसी बंटवारा करती हैं, किसी भी देश की संस्कृति भाषा से ही सुरक्षित रहती है। यदि भारत देश को एकता सूत्र में बांधे रखना है और मिलीजुली संस्कृति का निर्माण कराना है, तो सभी को हिंदी भाषा स्वीकार करनी होगी। जो इस फॉर्मूले को नहीं स्वीकार करता है, वह भारतीय नहीं हो सकता, वह मराठी, गुजराती, तमिल हो सकता है। केवल भौगोलिक नजरिए से वह भारतीय हो सकता है, किंतु वास्तविक दृष्टि से वह भारतीय नहीं है। यदि मेरा सुझाव मान्य नहीं होगा, तो भारत भारत नहीं रहेगा। एक, डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज कॉमा वॉल्यूम फर्स्ट कॉमा पृष्ठ संख्या 147। पृष्ठ संख्या 122। यह विभिन्न राष्ट्रीयता का फंड रहेगा जो अपने स्वार्थों के लिए एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत रहेंगे। मैंने पाकिस्तान की वकालत केवल इसीलिए की थी क्योंकि इसके बिना हिंदू स्वतंत्र तो होते लेकिन आजाद नहीं होते। सभी राज्यों में जहां हिंदू बहुलता रहती वहां मुसलमान गुलाम रहते, और जहां मुस्लिम बहुलता रहती वहां के हिंदू गुलाम रहते। यहां एक देश की सरकार रहती लेकिन अंदर से दो राष्ट्रीयता रहती। इन दोनों राष्ट्रीयता में से निःसंदेह मुसलमान राजकीय ताकत होते। हिंदू महासभा और भारतीय जनसंघ कभी ताकतवर हालत में नहीं हो सकते थे। जब बंटवारा हुआ तो इसीलिए मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और उनसे प्रार्थना की कि अवशेष भारत अब और समृद्धशाली हो। लेकिन मुझे अब फिर लगता है कि दुर्भाग्य भारत को घेर रहा है। जो लोग भाषावार राज्य की वकालत कर रहे हैं वे क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपनाएंगे और यही संयुक्त भारत की मृत्यु की घंटी होगी। हम अंतिम तौर पर और प्रथम रूप में भारतीय हैं, यह भाव मर जाएगा और भारत पूर्व की भांति अंदर से विभक्त रहेगा। राज्यों के पुनर्निर्धारण से दक्षिणी राज्य छोटे और उत्तर के राज्य बड़े राज्यों के वर्चस्व के खिलाफ बगावत होगी। हिंदी उत्तरी भारत की भाषा बनकर रह जाएगी और इससे चिढ़ पैदा होगी। उन्होंने संविधान सभा के अनुभव के आधार पर कहा कि सबसे बड़ा विवाद भाषा के ही सवाल पर हुआ। पूरा सदन और पूरी कांग्रेस पार्टी विभाजित थी। धारा 115 पर मत विभाजन हुआ। 78 वोट हिंदी के पक्ष में और इतने ही वोट हिंदी के विरोध में आए। बराबरी के कारण राष्ट्रभाषा का निर्णय नहीं हो सका। मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी की बैठकों पर दृष्टि रखनी होती थी। सदन के भीतर इसका निर्णय नहीं हो सका तो पार्टी के भीतर विचारार्थ यह प्रकरण आया। वहां भी लंबी बहस हुई। वहां भी वोट हुआ और 77 और 78 वोट आए। इस तरह एक वोट के बहुमत से हिंदी जीत सकी। उन्होंने प्रश्न किया कि जवाहरलाल के प्रधानमंत्री होने पर बनारस के पंडितों ने विशेष यज्ञ किया और राजदंड लेकर जवाहरलाल को दिया। अभी राष्ट्रपति बनारस में जाकर ब्राह्मणों का चरण स्पर्श किए, गंगा जल लेकर उनके पांव पखारे। उत्तर भारत में सती प्रथा आज भी विद्यमान है। छुआछूत भारी पैमाने पर है। क्या इन कुरीतियों के खिलाफ कभी बगावत होगी? उत्तर के लोग तो इन कुरीतियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन दक्षिण में इसके खिलाफ बगावत होगी। मद्रास के नेता थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जिन दिनों मैं भारत का कानून मंत्री और संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था, उन्हीं दिनों वे मद्रास के गवर्नर थे। उनसे कई बार मेरी भेंट हुई। उन्होंने मुझे बार-बार चेताया कि संविधान बनाने में आप एक काफी गलती कर रहे हो। एक ही संघ होने से देश भर में उत्तर वाले हिंदी भाषी राज्यों का पूरे देश पर वर्चस्व हो जाएगा। दक्षिणी राज्यों में गुलामी रहेगी, इसीलिए भारतीय संघ को दो हिस्सों में होना चाहिए। एक हिंदी भाषी उत्तरी राज्यों का संघ और दूसरा दक्षिणी भाषी राज्यों का अलग संघ। इन दोनों संघों को मिलाकर एक महासंघ बनना चाहिए। किंतु मैं व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण भारत की एकता का पक्षधर था और उनकी राय का घोर विरोधी था। यह विचार एक घनघोर कांग्रेसी के अंतर्मन से निकला हुआ विचार था। मुझे लगता है कि राजा जी एक भविष्यवक्ता थे जो भारत का विभाजन उत्तर और दक्षिण के बीच में देख रहे थे। पृष्ठ संख्या 123। हम लोगों को पूरी ताकत लगाकर राजा जी की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। अमेरिकी इतिहास साक्षी है कि उसका भी गृह युद्ध दक्षिण और उत्तर हुआ था। कमीशन को समझ नहीं थी कि उत्तर और दक्षिण के बीच केवल भाषाई विवाद नहीं अपितु राजनैतिक विवाद भी है। इसीलिए एक योग्य राज पुरुष की तरह भारत के भवितव्यता को समझकर उसके परिकार के कदम अभी से उठाने होंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने उत्तर प्रदेश को तीन हिस्सों में बांटने की बात करते हुए कहा कि अभी संसद में हुई बहस में गृह मंत्री पंडित पंत ने भी कहा है कि उत्तर भारत को बांटकर उसे छोटा करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश में मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद को अलग-अलग राजधानी मानकर तीन हिस्से किए जाएं, उसी तरह पटना और रांची को राजधानी बनाकर उसे दो हिस्सों में बांटा जाए, मध्य प्रदेश के भी दो हिस्से हों और महाराष्ट्र एक अलग, बॉम्बे शहर राज्य अलग, पश्चिम महाराष्ट्र सेंट्रल और पूर्वी, इनके अलग-अलग भेद हैं, उस पर विचार किया जाए। मुगल सल्तनत के समय में भारत की दो राजधानी दिल्ली और श्रीनगर थी। अंग्रेजों ने भी दिल्ली की तरह शिमला को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया था। दक्षिणी राज्यों से दिल्ली बहुत दूर है, यह रक्षात्मक दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है, इसीलिए दूसरी राजधानी के तौर पर हैदराबाद को स्वीकार करने में क्या कठिनाई होनी चाहिए। यदि हम डॉक्टर अंबेडकर के भाषाई राज्यों के विचारों की पूरी समीक्षा करें, तो समय और परिस्थिति ने उनकी बहुत सी स्थापनाओं को गलत सिद्ध कर दिया है। भाषाई आधार पर टकराव की स्थिति कम होती जा रही है। तमिलनाडु के कुछ जिलों को छोड़ दें, तो पूरे दक्षिण भारत में हिंदी के लिए वह दुराग्रह नहीं रह गया है जो उस समय था। अभी कर्नाटक की सरकार ने अपने राज्य में गैर कन्नड़ फिल्मों को मनोरंजन कर बढ़ाकर उसे महंगा कर दिया है, लेकिन वहाँ के युवक युवती इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे हिंदी फिल्मों के पक्ष में हैं। राजनैतिक स्तर पर भी उत्तरी भारत का वह वर्चस्व नहीं रहा जो उस समय माना जाता था। राजगोपालाचारी की आशंका भी गलत सिद्ध हो रही है। दो दो प्रधानमंत्री दक्षिण भारत से हो गए और उत्तर भारत के जनमानस में कोई उनके प्रति दुर्भाव इस आधार पर नहीं पैदा हुआ कि वे दक्षिण भारतीय हैं। भाषावार राज्यों के प्रश्न पर उनके विचारों पर पूरी तरह एक रूपता नहीं है। वे कभी बंबई को महाराष्ट्र में मिलाने के पक्ष में थे और कभी उसे अलग कर स्वतंत्र राज्य बनाने के पक्ष में थे। अन्य राज्यों के भी पक्ष में उनके तर्क समीचीन नहीं लगते। जैसे उत्तर प्रदेश के संबंध में तीन राजधानी बनाकर इसका बंटवारा करना, फिर भी उनकी राय को आलेख में प्रस्तुत करना मेरा कर्तव्य था, जिसे मैंने किया है। एक, डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज, कॉमा वॉल्यूम फर्स्ट, कॉमा पृष्ठ संख्या 171।